کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. मैंने कुछ देर के लिए जब आंखें बंद की तो खोलने पर मेरे सामने काबा आ गया जिसको ढा दिया गया था. اس کی تھوڑی تھوڑی دیواریں اونچی ابھی ہوئی تھیں, یوں لگ رہا تھا کہ یہ لوگ اس کی نئی تعمیر کر رہے ہیں. ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا, ہم قریش تو پہلے ہی ڈرتے تھے کہ کہیں سیلابی پانی پہاڑوں کی طرف سے آ کے کعبہ میں داخل نہ ہو جائے, اور دیکھو وہی ہوا. اب کہ ہمیں مضبوط اور بلند دیواریں بنانی ہوں گی تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو, اور اوپر چھت بھی ڈالنی چاہیے. یہ شاید کوئی سردار تھا. وہ پھر بولا, اس دفعہ ہم دروازہ بھی اونچا کریں گے اور اس کو تالا بھی لگایا جائے گا تاکہ بیت اللہ میں جانے کی اجازت دیکھ کے دی جائے اور ہر ایرا غیرا اندر نہ جا سکے. تبھی یہ ممکن ہوگا کہ چوری کا ایسا واقعہ کبھی دوبارہ پیش نہ آئے. میں حیران ہو گئی, یہاں پہ چوری ہوئی ہے؟ میں نے ادھر ادھر گھوم کے کچھ سن گن لینے کی کوشش کی کہ ہوا کیا ہے. کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ بیت اللہ کی نظر میں جو لوگ اپنا مال یہاں پہ لا کے ڈالتے تھے وہ خزانہ کسی نے چوری کر لیا تھا. میں دیکھ رہی تھی ایک رومی نسل کا آدمی, شاید کوئی معمار تھا, وہ بڑی مہارت سے ہدایات دے رہا تھا کہ کس طرح پتھر لگائے جائیں, کس طرح اینٹیں لگائی جائیں, کیسے گارا لگایا جائے. کعبہ تو ڈھایا جا چکا تھا پر اب ہر طرف سے اس کی دیواریں چنی جا رہی تھیں. یہ کتنا اچھا کام انہوں نے کیا کہ ہر دیوار ایک قبیلے کو دے دی گئی تھی اور وہ اپنی اپنی طرف کی دیوار بنا رہا تھا تاکہ کسی کو بھی کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو. سب اپنے اپنے کام میں بڑی دلجمی کے ساتھ لگے ہوئے تھے, بہت شوق اور محنت اور لگن سے اپنی اپنی طرف کی دیوار تعمیر کر رہے تھے. کام سخت تھا, پتھر ڈھونے پڑ رہے تھے, دور سے لانے پڑ رہے تھے, مگر کوئی بھی شکایت نہیں کر رہا تھا. ان کا شوق دیدنی تھا. مجھے یاد آیا ہمارے وقت میں بھی تو ہم کعبہ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, اور یہ لوگ بھی کتنے شوق کے ساتھ اس کی خدمت کر رہے ہیں. سب آگے بڑھ بڑھ کے اپنا حصہ ڈالنے میں لگے ہوئے. میں نے دیکھا میرے پیارے نبی اور ان کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو ڈھو کے لا رہے ہیں. اچانک ایک طرف ایک شور اٹھا, کوئی ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا یا کوئی لڑائی ہو رہی ہے. میں نے آگے بڑھ کے دیکھا, حجر اسود چونکہ کونے میں تھا تو دونوں طرف کے لوگ, دونوں قبائل اپنی اپنی طرف کی دیوار اونچی کر کے وہاں تک پہنچ گئے تھے, اور ہر کوئی اب یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود وہی لگائے. کچھ دیر میں اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی. لوگ چیخ رہے تھے, یہ کیا بات ہوئی, ہم یہ پتھر خود لگائیں گے, हमारा कबीला लगाएगा। दूसरी तरफ वाले कह रहे थे, ये कभी नहीं हो सकता, ये शर्फ तो हमारे हिस्से में ही आएगा। अब वो लोग जो तीसरी और चौथी तरफ दीवार बनाने में लगे हुए थे, वो भी अपना काम छोड़ के इधर आ गए और वो कहने लगे, हिजरे अस्वद के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था, वो तो हमारे हिस्से में आया ही नहीं, हम तो उधर की दीवारें बनाने में लगे हुए, इसमें तो हमारा हिस्सा भी होना चाहिए। आवाजें इतनी बुलंद होने लगी कि लगता था अभी यहां जंग छिड़ जाएगी। मैं हैरान थी कि हिजरे अस्वद की इनके जमाने में भी इतनी कदरों कीमत, इतनी अहमियत कि ये एक दूसरे के खून करने पे भी तुल गए हैं। हर कबीला अपने अपने जत्थे साथ लेकर पूरी कुव्वत से अपने दलाइल दे रहा था कि ये उसी का हक है कि वो हिजरे अस्वद नसब करे। तामीर का काम तो कहीं पीछे ही रह गया, सब लोग ये भूल गए कि वो कर क्या रहे थे। अब सबसे बड़ा मसला तो यही खड़ा हो गया कि हिजरे अस्वद कौन लगाएगा। हर कबीला दूसरे को खूनखार निगाहों से देख रहा था, जैसे अभी दूसरे का खून पी जाएगा। इतने में एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग शख्स कहीं से तशरीफ लाए। वो अपने चेहरे से ही बहुत दाना लग रहे थे। लोग कहने लगे, अबू उमैया बिन मुगीरा आ गए। ये तमाम लोगों में सबसे उम्र रसीदा थे, लगता है कुरैश के सबसे बूढ़े आदमी। उन्होंने आके सबसे कहा, ऐ कुरैश, तुम जिस मामले में इख्तलाफ कर रहे हो तो ऐसा करो कि उस शख्स को अपना हकम बना लो जो सबसे पहले मस्जिद के बाब बनू शहबा से दाखिल हो। लोग उनकी बात सुनकर कुछ मुतमईन से हो गए, शुक्र है उनको बात समझ आ गई। सब सर हिलाने लगे, सबके चेहरों पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वही जो अभी दूसरों से लड़ने पे तुले हुए थे, अब कुछ कदरे काम डाउन हो गए। सबकी नजरें अब बाब बनू शहबा की तरफ थीं। इतने में वहां दूर से मुझे मेरे प्यारे नबी दाखिल होते हुए नजर आए। मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही, और मैंने देखा कि मैं ही सिर्फ खुश नहीं थी, मेरे अलावा जितने भी लोग वहां पे थे सबके चेहरे खिल गए। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, अमीन जो फैसला करेंगे हम उस पर राजी हैं। मुझे खुशी हुई कि ये सब मेरे नबी को इतनी इज्जत देते, इतनी अहमियत देते, और मेरे नबी की रेपुटेशन इन लोगों में इतनी अच्छी है, इनको कितना एतमाद है इन पे, ये आपकी कितनी तकरीम करते हैं। और मुझे यकीन सा होने लगा कि जब मेरे नबी इनको तौहीद का पैगाम देंगे तब भी यकीनन ये मान ही जाएंगे, आखिर इतनी इज्जत जो करते हैं। मेरे नबी करीब पहुंचे तो लोगों ने आगे बढ़ के उनको अपना माजरा सुनाया, अपने झगड़े का फैसला करने के लिए हकम बनाया। मैंने देखा मेरे नबी हालांकि नौजवान थे, आपसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे जो आपके इर्द गिर्द थे, मगर आप जरा भी ना घबराए, ना किसी के रोब में आए, और आपने कितनी हिकमत और दानाई के साथ बड़े पुरसकून लहजे से फरमाया, जाओ मेरे पास एक कपड़ा ले आओ। कहीं से कोई एक बड़ी सी चादर लेकर आपके पास आ गया। मेरे नबी ने उसको जमीन पे बिछाया और मेरे सामने उन्होंने अपने मुबारक हाथों से हिजरे अस्वद को इसमें रख दिया। फिर मेरे नबी ने सबसे फरमाया, हर कबीला चादर का एक एक किनारा पकड़ ले, फिर सब मिलकर इसको काबा के पास ले चलो। हर कबीले का एक एक फर्द आगे बढ़ता है और चादर को किनारे से पकड़कर उठाता है, गोया हर कोई अपने कबीले को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर सब उस जगह तक ले आए जहां हिजरे अस्वद नसब होना था। अब मेरे नबी आगे बढ़े और उस पत्थर को उठा के उसकी जगह पर रख दिया। सभी खुश हो गए। मैं सोच रही थी मेरे नबी में कितनी फरासत है, कितनी दानिशमंदी है और कितना लोगों का एहसास है। अल्लाह ताला ने तो आपके हाथों से ही नसब करवाना था, और मेरे नबी चाहते तो खुद ही ये काम कर लेते, मगर उन्होंने कितना सबके जज्बात का एहसास किया कि सबको शामिल कर लिया इस खैर में। वाकई ये खूबी बहुत कम लोगों में होती है। अक्सर लोग कोई खैर का काम जब देखते हैं तो चाहते हैं कि बस मैं कर लूं और किसी को भी ये हिस्सा ना मिले, लेकिन मेरे नबी ने सबका हिस्सा डलवाया, सबको मुतमईन किया। क्यों ना लोग आपसे खुश होते, क्यों ना लोग आपकी तारीफ करें, क्यों ना लोग आपको अमीन और सादिक कहें और करीम कहें। लोग मुतमईन होके अब दोबारा खुशी खुशी अपने काम में लग गए। इस तरह से एक बहुत बड़ा फितना मेरे नबी की वजह से दब गया, एक बड़ी जंग दम तोड़ गई, और मैंने भी सुख का सांस लिया, इसलिए कि यह जगह कोई खून खराबे की तो नहीं थी। मैं अब वहां से रवाना हो गई। रास्ते में मुझे एक आदमी नजर आया जो लोगों को बुत परस्ती से मना कर रहा था। वो कह रहा था, लोगों, तुम में से कोई एक भी इब्राहिम के दीन पे नहीं है सिवाय मेरे, तुम सब ये दीन छोड़ चुके हो। मैंने तुम लोगों का दीन छोड़ दिया है और इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करता हूं। वो बुत नहीं पूजते थे, मैं इंतजार में हूं एक नबी के आने का, और वो औलादे इस्माइल में से होगा, मगर मुझे लगता है कि मैं उसके वक्त को पा ना सकूंगा। हाँ ये जरूर है कि मैं उस पर ईमान लाता हूँ, उसकी तस्दीक करता हूँ, गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। फिर वो शख्स बड़ी लजाजत से हाथ उठाकर कहने लगा, ए अल्लाह, मैं अगर तेरी इबादत का कोई बेहतरीन तरीका जानता होता तो मैं उस तरह तेरी इबादत कर लेता, लेकिन मुझे इल्म नहीं है। फिर उसने अपनी हथेलियां जमीन पे रखी और सजदा रेज हो गया। मैं देख रही थी लोग उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं कर रहे थे, उसकी बातों को कोई खास अहमियत नहीं दे रहे थे। एक नौजवान ने गुजरते हुए उसकी बात सुनने के लिए खड़े होना चाहा तो उसके दोस्त ने उसे कहा, यहां रुकने की जरूरत नहीं, आगे चलो, इसकी तो रोज की यही कहानी है, सर फिरा है, लोगों को ऐसे ही कहता रहता है। वो हैरान होके बोला, अच्छा कौन है ये? यूं लगता था कि शायद ये शख्स यहां पे नया आया है। दूसरे ने उससे कहा, ये जैद बिन अमर बिन नुफैल है, इसके जैसे चंद और सरफिरे भी मक्का की बस्ती में मौजूद हैं, वो भी इसी किस्म की बातें करते हैं, और ये तो हमारे खुदाओं की कुर्बानी वाला गोश्त भी नहीं खाता, अकल मारी गई है इसकी। मैं चुपके से खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। ऐसे शिर्क के अंधेरे में भी कोई है जो हक की बात करने वाला है? वाकई जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। वाकई ऐसे माशरे में भी अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को रखा हुआ है जो तौहीद की बात करने वाले। वो शख्स अपनी बातें बोलता जा रहा था, उसको परवाह नहीं थी कोई सुन रहा है या नहीं। वो कह रहा था, लोगों, अपनी बेटियां जिंदा दफन ना करो, मुझे दे दो, मैं उनको पाल लूंगा। मैंने सोचा, मेरे प्यारे नबी इसी माशरे में इसके सामने घूम फिर रहे हैं, मगर इसको मालूम नहीं कि ये हैं वो आखिरी नबी जिनके इंतजार में वो है। अभी तो मेरे नबी को खुद भी मालूम नहीं कि वो नबूवत की मेराज पाने वाले हैं। मैंने फिर कुछ देर के लिए आंखें बंद की, अब जब खोला तो खुद को खदीजा के घर में पाया। नन्हे नन्हे बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, ये घर अब बच्चों की वजह से रौनक से भर गया था। खदीजा बड़ी मेहनत से कुछ खाना बांध रही थी। फिर मैंने अपने नबी को घर में दाखिल होते हुए देखा। उन्होंने बच्चों को प्यार किया, खदीजा से हाल अहवाल पूछा। उनके चेहरे से परेशानी आया थी। यूं लगता था लोगों के हालात देख देख के और कोड़ कोड़ के इनकी ये हालत हो गई है। आखिर क्यों ना कुड़े, ये माशरा तो कहीं से भी एक इंसाफ पसंद माशरा नहीं लग रहा। जुल्म ही जुल्म है, जहां देखो जुल्म। मेरे नबी कुछ देर खतीजा से बातें करने लगे। उनकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि आप पहाड़ पर एक गार में जाके अल्लाह ताला की इबादत करने में मसरूफ हैं और खाना लेके जा रहे हैं। खदीजा ने खाना अच्छी तरह पैक कर दिया था। उन्होंने वो मेरे नबी को दिया और मेरे नबी रवाना हो गए। जिंदगी इस जगह पे मामूल के मुताबिक चल रही थी। मक्का की गहमा गहमी रौनकें उसी तरह थी। दिन यहां गुजर रहे थे। एक दिन मैंने अचानक से देखा मेरे नबी घबराए हुए कहीं से आ रहे हैं और तेजी से अपने घर में दाखिल हुए। मैं भी पीछे हो ली। देखा तो अपनी प्यारी बीवी खतीजा से जाकर कहने लगे, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर उतार दो। मेरे नबी पे घबराहट तारी थी। लग रहा था उनकी तबीयत खराब हो रही है। क्या बात है, बीमार हो गई है या किसी से किसी बात के ऊपर कोई झगड़ा हो गया है? हजारों ख्यालात मेरे जहन में आए। मेरे नबी खौफजदा लग रहे थे। खतीजा ने बगैर कोई दूसरा सवाल किए हुए उनको चादर ओढ़ा दी, मगर वो भी कुछ समझ ना पाई कि हुआ क्या है। हाँ, समझदार इतनी थी कि ऐसा नहीं किया कि फौरन सवालात की बौछार करते, खामोश रही। मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता मेरे नबी के चेहरे से खौफ के बादल छटने लगे। आप कुछ अफाका महसूस करने लगे। खतीजा का कितना तहम्मुल था इस सारे अरसे में, ना वो पहने खुई ना ही उन्होंने कोई ऐसी बातें कही जो नागवारी की हो, ना ही वो वावेला करने खड़ी हो गई। मैंने सोचा अगर मेरे यहां की खवातीन खतीजा की जगह होती तो ना जाने क्या क्या कहती। जरूर कहती किसने कहा था जाने को, मैं तो पहले ही कहती थी ये नहीं होना चाहिए। मैं खुद को भी अब इस पोजीशन में रखकर सोच रही थी, अगर मैं यहां होती तो क्या मैं इतना जब्त कर सकती थी। ये खतीजा का ही हौसला था। खामोशी से मेरे नबी के पास बैठी हुई थी, उनको दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे नबी का खौफ कुछ दूर हुआ और वो कुछ बोलने के काबिल हुए, तब उन्होंने खुद ही बताना शुरू किया कि गार में उनके साथ क्या हुआ और वहां एक फरिश्ता आया जिसने उनको भींचा है और कुछ पढ़ने को कहा है। आखिर मेरे नबी ने फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। मैंने देखा खदीजा बड़े तहम्मुल के साथ उनकी सारी बात सुनती रही, जरा भी घबराई नहीं। और मैंने तो अपने जमाने में साइकोलॉजी में पढ़ा था कि घबराए हुए शख्स से ज्यादा सवालात नहीं करने चाहिए, उसको पहले पुरसकून होने देना चाहिए। ये रिसर्च तो मेरे जमाने में आई और 1400 साल पहले खतीजा को क्या ये मालूम था कि इस तरह से तसल्ली देनी है और सवालात नहीं करने। तहम्मुल से सुनने के बाद भी उन्होंने आगे से कोई उल्टी सीधी बात नहीं की, ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे मेरे नबी और घबरा जाते। जैसे हम में से अक्सर नासमझ बीवियां करती हैं। ये वाकया खतीजा के लिए भी यूं लग रहा था कि एक बहुत अलग सा वाक्य है, बहुत खौफजदा करने वाली चीज है, मगर वो तब भी मेरे नबी से बड़े ठंडे अंदाज में फरमाने लगी, आप फिक्र ना करें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। फिर अपने दावे को की दलील के तौर पे कहने लगी, आप तो सिला रहमी करते हैं ना, आप तो दरमांदा का बोझ उठाने वाले हैं ना, आप तो फकीरों मोहताजों को कमा के देते हैं, आप तो मेहमानों की इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो हक के रास्ते में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं, आपका रब कभी आपको जाया नहीं करेगा। कितनी प्यारी तसल्ली थी, एक दफा भी कोई ताना नहीं, एक दफा भी हौसला शिकनी नहीं, एक दफा भी घबराए हुए इंसान को और घबराहट में डाल देने वाली बातें नहीं। सारी बातें ऐसी थी जो सुकून दे देने वाली थी। कितने प्यारे तरीके से उन्होंने मेरे नबी की अच्छी सिफात उनको याद दिला के पुरसकून कर दिया। उनकी इन बातों से मैंने देखा मेरे नबी में बड़ा हौसला आया है। वाकई एक अच्छा साथी हो जाना, समझदार साथी होना जिंदगी में कई मुसाइब को हल्का करने में मदद देता है। और अगर साथी नादान हो तो मुसीबत कई गुना बढ़ जाती है। मेरे नबी पे जो हैबत थी, जो खौफ था, जो घबराहट थी, वो अब दूर हो गई थी। यूं लगता था कि जैसे किसी ने मरहम रख दिया हो। और मुझे ये भी लग रहा था कि मेरे नबी को वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनके पास अल्लाह का कोई पैगाम आने वाला है। जबी तो वो इतना घबरा गए थे, वो ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखते थे कि उनके साथ ये सब हो जाएगा। जब मेरे नबी को कुछ तसल्ली में देखा, तब खतीजा बोली, आप उठें और वरका बिन नौफल के पास चलते हैं, देखते हैं वो कुछ बताएं हमें। मेरे नबी आहिस्ता से उठे और खतीजा के साथ चल दिए। आज हम यहाँ तक करेंगे इंशाअल्लाह, कल आपके साथ बाकी बात होगी कि वरका बिन नौफल के यहाँ क्या बात हुई। अल्लाह ताला हमारा ये बैठना कबूल फरमाए।